विशाल कुछ क्षण वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखें अंकिता की कसकर बंद हुई मुट्ठी पर टिकी थीं। कमरे में अब भी वही सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के भीतर बहुत कुछ चल रहा था। फायरप्लेस की लपटें धीरे धीरे उठतीं और फिर झुक जातीं। उनकी नारंगी रोशनी कभी अंकिता के चेहरे पर पड़ती, कभी विशाल की आंखों में चमक जाती। अंकिता ने जैसे ही दूसरी चूड़ी उतारने की कोशिश की, दर्द की हल्की सी लहर फिर हथेली में दौड़ गई। उसने होंठ भींच लिए, चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की, लेकिन दर्द आंखों तक पहुंच चुका था। वो जल्दी से मुड़ने लगी। मैं ठीक हूं, उसने बिना उसकी तरफ देखे धीमी आवाज में कहा, लेकिन उसकी आवाज खुद उसका साथ नहीं दे रही थी। विशाल ने पहली बार पूरे कमरे की खामोशी को तोड़ा। हाथ दिखाओ। आवाज हमेशा की तरह गंभीर थी, लेकिन उसमें आज आदेश से ज्यादा चिंता थी। अंकिता ने हल्का सा सिर हिलाया। कुछ नहीं हुआ, छोटा सा कट है, वो जाने लगी। तभी विशाल दो कदम आगे बढ़ा। उसकी चाल हमेशा की तरह स्थिर थी, लेकिन इस बार उसमें हल्की सी जल्दबाजी भी थी। अंकिता, सिर्फ उसका नाम। इतना भर सुनकर ही अंकिता के कदम रुक गए। वो धीरे से पलटी। दोनों की नजरें पहली बार कमरे में आने के बाद ठीक से मिली। विशाल की आंखें उसकी चेहरे पर नहीं, सीधे उसकी मुट्ठी पर थीं। हाथ, इस बार आवाज थोड़ी नरम थी। अंकिता ने धीरे से मुस्कुराने की कोशिश की। सच में इसकी जरूरत नहीं है, इतना सा कट है। विशाल बिना कुछ बोले उसके सामने आकर खड़ा हो गया। दोनों के बीच अब मुश्किल से एक हाथ भर की दूरी थी। अंकिता का दिल अनायास तेज धड़कने लगा। वो पहली बार इतनी नजदीक खड़ा था कि उसकी हल्की सी सांस भी महसूस हो रही थी। विशाल ने धीरे से अपना दाया हाथ आगे बढ़ाया। जिद मत करो, अंकिता ने कुछ पल उसकी ओर देखा, फिर धीरे धीरे अपनी बंद मुट्ठी खोल दी। हथेली खुलते ही खून की छोटी सी बूंद फिर उभर आई। विशाल की भौंने हल्की सिकुड़ गईं। उसे शायद चोट से ज्यादा इस बात ने परेशान किया कि उसने दर्द छिपाने की कोशिश की। दर्द हो रहा है, उसने धीमे स्वर में पूछा। अंकिता ने तुरंत सिर हिला दिया, नहीं। लेकिन उसी पल कट पर हवा लगी और उसकी पलकें अनायास बंद हो गईं। उसकी छोटी सी प्रतिक्रिया ने ही सच बता दिया। विशाल कुछ नहीं बोला, वो अलमारी की तरफ गया। ऊपरी खाने से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला, ड्रेसिंग टेबल के सामने रखी छोटी कुर्सी को हल्का सा खिसकाया। बैठो, अंकिता ने उसकी तरफ देखा। मैं खुद। बैठो, इस बार आवाज में हल्का सा आग्रह था। अंकिता चुपचाप बैठ गई। वो अपनी घायल हथेली गोद में छिपाने लगी। विशाल उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। इतने बड़े उद्योगपति को इस तरह अपने सामने बैठे देखकर अंकिता एक पल के लिए घबरा गई। आप क्या कर रहे हैं? विशाल ने बिना ऊपर देखे जवाब दिया। पट्टी, उसने कॉटन निकाला, एंटीसेप्टिक लगाया। जैसे ही भीगा हुआ कॉटन कट पर छुआ, आह, अंकिता की उंगलियां अनायास सिकुड़ी। विशाल ने तुरंत उसकी कलाई को बहुत हल्के से थाम लिया। पकड़ इतनी सावधान थी जैसे कोई कांच की गुड़िया टूट ना जाए। बस दो सेकंड, उसने धीमे से कहा। अंकिता की नजरें अब उसके चेहरे पर टिक गईं। वो पूरी गंभीरता से उसके हाथ पर ध्यान दे रहा था। उसकी भौहें हल्की तनी हुई थीं, आंखों में वही कठोरता थी, लेकिन आज उसमें एक अजीब सी कोमलता भी घुल गई थी, जैसे उसे चोट अपने हाथ में लगी हो। अंकिता पहली बार उसे इतने ध्यान से देख रही थी। उसके माथे पर गिरती एक बिखरी लट, साफ तराशी हुई दाढ़ी और किसी काम में पूरी तरह डूब जाने की आदत। अनजाने में उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। तभी विशाल ने ऊपर देखा। दोनों की नजरें टकरा गईं। एक पल, दो पल, कोई कुछ नहीं बोला। फायरप्लेस की लपटें जैसे उस खामोशी को और गहरा बना रही थीं। सबसे पहले अंकिता ने नजरें झुका ली, उसके गालों पर गुलाबी रंग उतर आया। विशाल ने भी तुरंत ध्यान वापस पट्टी पर लगा लिया, लेकिन उसके होठों के किनारे बहुत हल्के से ढीले पड़े, जैसे वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि अभी अभी क्या हुआ। उसने सावधानी से मरहम लगाया, फिर छोटी सी पट्टी खोलकर कट पर रखी। पट्टी बांधते समय उसकी उंगलियां अंकिता की उंगलियों से हल्के हल्के छू रही थीं। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई बनावटीपन नहीं, बस बहुत सारा ध्यान। अंकिता को महसूस हो रहा था कि उसकी धड़कनें हर स्पर्श के साथ और तेज होती जा रही थीं। उसे खुद पर हैरानी हो रही थी। एक साधारण सी पट्टी, और दिल जैसे मानने को तैयार ही नहीं था कि ये बस एक साधारण पल है। पट्टी बांधने के बाद विशाल ने उसका हाथ पलट कर देखा। ज्यादा गहरा नहीं है, कल तक ठीक हो जाएगा, अंकिता ने धीरे से मुस्कुराकर कहा। थैंक यू, विशाल ने पहली बार उसकी आंखों में देखकर कहा। धन्यवाद की जरूरत नहीं, अगली बार कांच की चूड़ियां उतारते समय जल्दबाजी मत करना, अंकिता हल्का सा हंसती। जी, वो उठने लगी, लेकिन उसी क्षण उसके दुपट्टे का किनारा कुर्सी के हत्थे में उलझ गया। संतुलन बिगड़ते ही उसका शरीर आगे की ओर झुक गया। विशाल अभी भी उसके सामने ही था। अगले ही पल अंकिता लड़खड़ाकर सीधे उसकी तरफ आ गई। विशाल ने बिना सोचे दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए। एक हाथ उसकी कमर के पास आकर ठहर गया, दूसरे ने उसके कंधे को संभाल लिया। दोनों एकदम स्थिर हो गए। अंकिता का चेहरा विशाल के बेहद करीब था, इतना करीब कि दोनों की सांसें एक दूसरे के चेहरे को हल्के से छू रही थीं। उसकी खुली लटकाल से फिसलकर विशाल की कलाई पर आ गिरी। कमरे में सिर्फ लकड़ियों के चटकने की आवाज थी। अंकिता की पलकों ने धीरे धीरे ऊपर उठकर उसकी आंखों में देखा। विशाल भी उसे देख रहा था। इस बार ना कोई कठोरता थी, ना कोई दूरी, सिर्फ एक लंबा, शांत और अनकहा पल। अंकिता की सांसें तेज हो गईं। उसने घबराकर नजरें झुका ली। विशाल को तभी एहसास हुआ कि उसका हाथ अब भी उसकी कमर के सहारे टिका हुआ है। उसने तुरंत धीरे से हाथ पीछे कर लिया, एक कदम पीछे हट गया। सॉरी, उसके मुंह से अनायास निकला। अंकिता ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं, मेरी गलती थी, मैं ही गिर रही थी। दोनों हल्का सा मुस्कुरा दिए। झिझक अब भी थी, लेकिन पहले जैसी भारी नहीं रही। कमरे की हवा में अब एक अनकही सहजता घुलने लगी थी। अंकिता ने अपनी पट्टी लगी हथेली को देखा, फिर धीमे से बोली, अब दर्द पहले से बहुत कम है। विशाल ने उसकी ओर देखा। अच्छा है, बस दो शब्द, लेकिन उन दो शब्दों में जितनी परवाह थी उतनी शायद लंबे वाक्यों में भी नहीं होती। फायरप्लेस की गर्माहट पूरे कमरे में फैली रही और उसी गर्माहट के बीच दोनों के दिलों की बर्फ भी अनजाने में थोड़ा थोड़ा पिघलने लगी।